ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अग्न्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
श्रीचैतन्यमनोवेष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं कदाचि स्वपदान्तिकं
जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानन्द
हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा। राम अभी गा रहे थे प्रभुपाद जी के द्वारा रचित जो एक बड़ा अच्छा वैष्णव सॉन्ग है जिसको मार्कण्डेय भागवत धर्म बोलते हैं, जिसको श्री प्रभुपाद जी ने जलदूत स्टीमर में लिखा था। ये सॉन्ग हम इसलिए चुन रहे थे क्योंकि इसमें श्री प्रभुपाद जी एक ऐसा भाव प्रस्तुत कर रहे हैं जो हर एक भक्तों के लिए आवश्यक है। बड़ा इम्पोर्टेंट भाव है जिसमें प्रभुपाद कहते हैं, मैं बड़ा अधम हूँ। भक्तिदान स्वामी जो हमारे आचार्य है वो कहते हैं, मैं बड़ा अधम हूँ और मुझ पर बड़ो बहुत कृपा किया है। किसने किया है? कृष्णा। बड़ो कृपा कोई ले कृष्णा अधम मेरे प्रति। वो ऐसा भाव इसलिए प्रस्तुत कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा मानते थे, भगवान की इच्छा जो थी वो उसको स्वीकार किया उन्होंने। लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको ये आज्ञा दी थी कि कब जब वो गृहस्थ थे कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को विश्व में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार क्यों नहीं करते विश्व के कोने कोने में। तो या ये आज्ञा भी बहुत ही गहरी है। ऐसा कोई आज्ञा नहीं कि आज से तुम माला दो माला जप करना चार माला जप करना। जब आप कई बार कृष्ण भक्ति में नए नए आप जुड़ते हैं तो आपको कोई पर्वत उठाने के लिए थोड़ी कोई बोलता है कि गिरिराज उठा लो आप गोवर्धन उठा लो। आपको क्या कहा जाता है? आप रेगुलर आइए, आप माला का जप कीजिए, भगवद गीता को पढ़िए, है ना। जब हम नए नए होते तो हमें ये बताया जाता है कि आप ये इस प्रकार। लेकिन प्रभुपाद को पहले ही दिन कहा कि तुम अंग्रेजी भाषा में इसको विदेश में प्रचार क्यों नहीं करते पहले ही दिन वो पहली मुलाकात में। हालांकि प्रभुपाद चौंक गए ये सुनकर, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो तो भविष्य के दृष्टा है। वो तो जानते हैं कि भविष्य में कौन क्या कार्य करने वाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो भक्तिदान सरस्वती प्रभुपाद जी का प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब वो आएंगे और कब मैं उनको बोलूंगा। लेकिन उस समय से लेकर के कई साल बीत गए, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने उनका शरीर भी छूट गया फिर भी ये नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर पाए, वो भगवान जब चाहे तभी हो सकता है ये तो। लेकिन प्रभुपाद ऐसा मानते थे कि मैं नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाए? उनकी आज्ञा का पालन। और इस बात को लेकर के चिंतित थे। और जब उनको सुमति मुरारजी के द्वारा भगवान ने उनको निमित्त बनाया और सुमति मुरारजी को ये निमित्त बनाया ये कार्गो स्टीमर में उनका ट्रैवलिंग अरेंज करने का। तो प्रभुपाद को ऐसा आशा लगा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की आज्ञा पूरी करने का अब मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है, अगर इसमें मैं सफल रह गया तो मैं सफल, अगर मैं इसमें सफल नहीं रह गया तो शायद मेरे मन में यह अधूरी रह जाएगी इच्छा कि मैंने मेरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो भक्तिदास सरस्वती महाराज की ये सेवा करने का अवसर उनको कई साल के पश्चात प्राप्त हुआ था, इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि बड़ो कृपा कोई ले कृष्णा, मुझे बहुत कृपा किया आपने अधमेरे प्रति, क्योंकि इसलिए मुझे इधर लाए हो, किला गया नीले हित करो ये बेगति, आपका कोई कार्य है नहीं तो आप मुझे इधर क्यों लाते। यहाँ पर ये प्रार्थना प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की है किसको किसको एड्रेस करते हुए, किसको किसको ये प्रार्थना कर रहे हैं? कृष्ण को कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हम प्रभुपाद से सीखना चाहिए इस चीज को कि कई बार हम कृष्ण भक्ति को पालन करते हैं, साधन श्रवणम कीर्तनम साधन भक्ति सोलामाला जप करना ग्रंथों को पढ़ना ये सब हम करते हैं, लेकिन हम भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं करते। भगवान से हमारे यहाँ हार्ट टू हार्ट रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करते, हृदय से हृदय का संबंध वो प्रस्थापित नहीं करते। यहाँ पर प्रभुपाद अपने मन की बात भगवान को बता रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे इधर लेके आए, तो क्या हम भी कभी ऐसा सोचते हैं कि कृष्णा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आध्यात्मिक गुरु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और ये दोनों ही जो पर्सनालिटी है आध्यात्मिक गुरु और कृष्णा ये प्रतिदिन आपके पास में है और आपको गाइड करते हैं प्रतिदिन एवरी डे, लेकिन हम इसको अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे। आज सुबह कई भक्त मुझे मिलने आए थे तो भक्तों को मैंने एक चीज बताई जो प्रभुपाद बार बार कहते थे कि मैंने आज तक कभी यह अनुभव नहीं किया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे दूर है, कभी अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि पद पद पर हमें आध्यात्मिक गुरु गाइडेंस देते हैं। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप क्या गुरु की उपस्थिति में कुछ गलत कर सकोगे? अगर गुरु फिजिकली आपके सामने खड़े हैं तो आप गुरु की उपस्थिति में कोई उल्टा सीधा काम करोगे? नहीं करेंगे, है ना। तो ये भाव हमें कंटिन्यू करना चाहिए, जब गुरु की वाणी हमारे साथ हो तभी भी, अगर वो अपू नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वाणी हमारे साथ है उस समय भी यही भाव प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ज्यादातर हम जानते हैं। अकादमिक रूप से देखा जाए तो हम ओवरऑल जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन समस्या है कि हमारा आसक्ति जो है, हमारा अटैचमेंट जो है वो बहुत प्रबल है, हमारी अज्ञानता जो है वो बहुत प्रबल है, इसलिए हम भगवान से संबंध स्थापित करने में चूक जाते हैं। और कभी कभी भक्तों का संग होने पर हमें वो याद दिलाते हैं कि हम भगवान से हमारा संबंध स्थापित करना है, गुरु जी से हमारा संबंध और स्थिर करना है, लेकिन हम भूल जाते बार बार इसको। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण के लिए समर्पण करें, क्योंकि संसार में हर एक वस्तु नश्वर है। हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम क्या आता है? सुखी होने के लिए प्रयास करते लेकिन परिणाम यह आता है कि हम डिसअपॉइंटमेंट होती है। जैसे हम कहते हैं ना पवर्ग पवर्ग, तो अब पवर्ग में क्या होता है? परिश्रम होता है, फिर फेना आता है, फिर बस बंधन या हमारा वो फ्रस्ट्रेशन, इतना सब करने के पश्चात भी आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी, भौतिक जगत में कोई कीमत नहीं है। एक राजा था, वो कहता था कि मैं हमेशा काम नहीं करूंगा तो ये राज्य कैसे चलेगा, कितना आवश्यक कितना इम्पोर्टेंट आदमी में। तो मिनिस्टर उनका मंत्री था, बड़ा होशियार था। मिनिस्टर ने कहा ऐसा मत सोचना, दुनिया आपसे नहीं चलती है, अगर आप नहीं होंगे तो भी काम तो होगा। तो राजा और मंत्री के बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस हुए। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप 2 महीने के लिए जंगल में चले जाओ, किसी को बिना बताए। तो राजा को भेज दिया जंगल में बिना किसी को बताए 2 महीने के लिए। और अचानक से सब लोग हाय हाय करने लगे, राजा कहाँ चला गया, ढूंढना शुरू कर दिया पूरे राज्य में, राजा कहाँ भाग गया। तो 1 वीक 10 दिन तक राजा की बातें चलती रही, राजा कहाँ है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में राज्य तो कैसे बंद हो सकता है। तो उनका राजकुमार था जो कि 8-10 साल का ही था, तो उसको टेम्पररी आसन दे दिया कि तुम संभालो जब तक तुम्हारे पिताजी मिल नहीं जाते। और हुआ ऐसा कि उस समय दूसरे राज्य ने युद्ध छेड़ दिया राजा उस राज्य के ऊपर, और ये जो राजकुमार था वो अपने पिताजी से काफी कुछ सीखा हुआ था। तो उसने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे युद्ध करो, ऐसे ऐसे निर्णय लेने चाहिए, मंत्रियों से परामर्श करके, और अपने अपना हिसाब से उसने बताया। और परिणाम ऐसा है कि युद्ध जीत गए और 2 महीने के पश्चात फिर मंत्री ने राजा के पास जाके कहा, देखिए 2 महीने का रिपोर्ट क्या कह रहा है, क्या हुआ आपके राज्य में। उन्होंने यहां तक भी बताया कि 10 दिन तक लोग आपका पूछते थे राजा कहाँ है। 10 दिन के बाद लोग ये पूछना भी बंद कर दिया कि राजा कहाँ है। कुछ दिन के पश्चात, 2 वीक के पश्चात लोग आपको भूल गए थे कि हमारा एक राजा था। ये है वास्तविकता इस संसार की, ये संसार की वास्तविकता है। कोई हमें इस संसार में पसंद नहीं करता, कोई नहीं पसंद करता, केवल कृष्णा और वैष्णव, ये दो ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। बाकी संसार में हरेक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ का पोषण करते हैं, अपने अपने सुख का स्वार्थ, अपना सुख का साधन ढूंढते हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो करीब का रिश्तेदार हो, दूर का रिश्तेदार हो, संसार में कोई भी हो, नोबडी लाइक्स अस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, किंतु हम पागल है उन सबके पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दुनिया भर का बोझ हमारे सिर पर लगा के बैठे। तो किसके प्रति हमारा जो सही लगा होना चाहिए वो होना चाहिए भगवान के प्रति और उनके भक्तों के प्रति, क्योंकि वो लोग हमें वास्तविक ज्ञान देते हैं, वो लोग हमें वास्तविक बुद्धि देते हैं, तो हमारा वास्तविक जीवन कैसा होना चाहिए। जब भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा, जैसे प्रभुपाद जी सॉन्ग में प्रार्थना कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि मेरी इच्छा कैसी है, एक्चुअली इच्छा प्रभुपाद की नहीं है, इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की कि सर्वत्र विचार हो भे मोर नाम, इच्छा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, जाओ तुम अंग्रेजी भाषा में जाकर प्रचार करो, है ना। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर प्रचार करूं, लेकिन शूद्रामी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, मैं एक शूद्र हूं, मैं दीन हूं, मैं दीनहीन हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो कृपा कर सकते हो और प्रचार संभव हो सकता है। हम जो करते हैं संसार में बहुत छोटा होता है, भगवान जो करते हैं बहुत बड़ा होता है। भगवान के सामने हमारा किया हुआ जो भी अकम्प्लिशमेंट है, अचीवमेंट है, वो तुच्छ है। चींटी सुगर के टुकड़े को माथे पे लेकर के घूमती है और सोचती है कि मैं कितना बड़ा भार उठाकर घूम रही हूँ और मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ, पसीना पसीना हो गया मेरा और यू नो कितना मेरा कितना मैं बहुत काम करता हूँ। इट्स अ बिग अचीवमेंट है और बहुत सिंसियर है, जेन्युइनली बहुत सिंसियरली वो काम करती है यू नो। उसके उसके मार्ग में अगर आप कुछ बाधा डालोगे तो वो रुकेगी नहीं और रास्ता बदल के चली जाएगी, है ना। लेकिन हमारे लिए उसके बोझा उठाने का जो मेहनत है उसकी वैल्यू हमारे लिए कितनी है? कुछ नहीं, है ना। तो इस तरह से हमारे अचीवमेंट्स, हमारे जो एंडेवर्स उसके सामने, कृष्ण के सामने कुछ नहीं, चिंटी जैसा है, कुछ भी नहीं है। कृष्ण बहुत कृपालु है कि हमारे छोटे प्रयास को कहते, ओ आपने इतना अच्छा किया, जैसे कोई पिताजी अपने बच्चे को कहते हैं ना, वो छोटा कुछ काम करेगा, ओ तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन फिर बोलते हैं उसको। सेम वे गुरु और कृष्ण हम पर विशेष कृपा करते हैं और हमें प्रोत्साहन देते हैं। तो इसलिए हमें विनम्र भाव से प्रभुपाद क्या कहते हैं, भक्ति नहीं वेद नहीं, ना मुझ में ज्ञान है ना मुझ में भक्ति है, लेकिन मुझे भक्ति वेदांत का उपाधि दे दिया गया है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ना मुझ में भक्ति है ना ज्ञान है। और जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि सारे संसार का ज्ञान और भक्ति केवल हमें ही भरा पड़ा है, है ना। प्रभु जी मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, इतने साल कृष्ण भक्ति में दिए, तो मैं क्या मूर्ख हूं? यस, मूर्ख तुम्ही तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। किसको बोला गया था ये? चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको कहा गया था, ईश्वरपुरी ने उनको कहा था, आई मीन संन्यास गुरु ने उनको कहा कि हे गुरु, गुरुजी ने उनको कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि हे चैतन्य, कृष्ण चैतन्य को कहा भगवान ने स्वयं, बोले मूर्ख तुम्ही, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, वेद पढ़ने का तुम्हारा बुद्धि नहीं है, तो तुम कृष्ण नाम जप करो बस, तुम इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे। अगर आपको हमें कोई कह दे बोले तुम मूर्ख नंबर एक है, तो कुछ शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं कर पाएगा, तुम जब जब माला का जप कर ले बहुत है, तो आपको आपको लगा ये इंसल्ट कर रहे हमारी। वही तो स्वयं भगवान है, उनको ये कहा गया। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम में कुछ गुण है, हम में कोई गुण नहीं है। तो आगे के कुछ जो पॉइंट्स है उसको हम बात करते हैं। टुडे विल फिनिश दिस लिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। इसमें नेवर प्रेज योरसेल्फ, खुद की प्रशंसा मत करो। अपनी प्रशंसा करने में कौन कंजूस होता है? कोई कंजूस होता है खुद की प्रशंसा करने में? राधा गोविंद महाराज क्या कहते थे कि खुद की प्रशंसा जनरली वो लोग करते हैं जिनकी प्रशंसा करना करने वाले संसार में सब खत्म हो गए। अब संसार में उसकी प्रशंसा करने के लिए कोई नहीं बचा है, तो फिर ये जिम्मेदारी खुद उठा ली। बताना पड़ेगा ना भाई, मैं भी कुछ कम नहीं हूं क्या, आप क्या सोच रहे हो? मैं भी काफी पुराना भक्त हूं। जब कोई व्यक्ति आपको बताता है कि मैं बहुत पुराना भक्त हूं, बड़ा सीनियर डिवोटी हूं, तो बड़ी दुख की बात है ये, जो भक्त को अपने गुणगान करने की नौबत आ गई है, अपना ही बता रहे खुद, मैं इतना पुराना भक्त हूं। व्हाट डज इट मीन, मैं इतना अच्छा सीनियर डिवोटी हूं, मैं बड़ा अच्छा कीर्तन करने वाला हूं, मैं बड़ा अच्छा लेक्चर देने वाला हूं, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि अगर कोई भक्त अगर ऐसा कहता है तो वास्तव में उनके वो अपने पतन के मार्ग पर जा रहे हैं, उनकी उनकी अधोगति हो रही है, उनकी उन्नति नहीं हो रही है। तो इसलिए कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करो। जैसे हमने देखा है एक भक्त प्रीचिंग करते थे फॉर एग्जांपल दूसरे किसी शहर की बात कर रहे हैं, तो उनको पूछा गया टेंपल के प्रेसिडेंट से कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हो, तो उनके नीचे बहुत सारे अलग अलग डिवोटीज थे जो आगे प्रचार करते थे, एक एक प्रोग्राम रन करते थे चार चार पांच पांच, तो उनको पूछा गया कि आप तो प्रभु आप तो बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हो, आप तो बड़ा अच्छा, कितना आपने शक्ति लगा, तो बोलते मैं तो एक्चुअली कुछ नहीं करता, ये लोग ही सब कुछ करते, जो उनके नीचे के जो डिवोटीज थे वही सब लोग करते, हम तो मुझे तो कुछ, मैं तो कुछ नहीं करता। तो फिर वो एक वही भक्त थोड़ी कुछ दिन के बाद उनके गाइडेंस में जो भक्त थे उनके पास गए जो कि प्रोग्राम रन करते थे, उनको कहा कि प्रभु आप तो बड़ा अच्छा प्रचार करते हो, आपका जो गाइडेंस देने वाले भक्त है उनसे भी आपका अच्छा, आप उनका गाइडेंस लेकर के आगे काम करते हो, इट्स सो नाइस। तो भक्त ने क्या कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरे जो सहयोगी भक्त लोग हैं जो सबॉर्डिनेट है, बोले वो ही सब लोग कर लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता हूं। तो ये क्या विचार है, जनरली डिवोटीज का विचार होता है कि क्रेडिट वो खुद नहीं लेते, ये भगवान का स्वभाव है, भक्तों का स्वभाव है, क्रेडिट खुद नहीं लेते, कुछ भी करते उसका क्रेडिट वो खुद कभी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो क्रेडिट के योग्य ही नहीं होते। कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना प्रचार हो ही नहीं सकता, तो फिर प्रशंसा किसकी करे, किसकी प्रशंसा करे, भगवान की करनी पड़ेगी ना फिर तो किसी व्यक्ति की। हाँ, लेकिन एज ए वैष्णव विमर्शनव कि भक्तों की प्रशंसा, गुरु की प्रशंसा और भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए। ये केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी का कल है ना तिरुभाव, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज को सहयोग किया था चैतन्य चैतन्य लिखने के लिए, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनसे एक शर्त रखी थी कि मैं तभी आपको हेल्प करूंगा चैतन्य चरितामृत में लिखने के लिए, पूरी चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यू वॉन्ट मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, अगर आप ऐसा ये शर्त मंजूर है तभी मैं बताऊंगा आपको। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यू फाइन चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत शायद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम, कुछ भी नहीं मिलेगा गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में, नथिंग। ये विशेष भावना है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की। कृष्णदास कविराज कहते हैं मेरा नाम भी मत लो, अगर मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे, नाम भी मत लो। और जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हमारा नाम भी नहीं लिया, कम से कम नाम तो अनाउंस करते तो उसमें क्यों मना कर दिया, प्रभु जी मैंने देखा मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, अब मैं क्यों सेवा करूं, उसको मेरी वैल्यू है क्या तो मैं उसको वैल्यू करूं, उसको करने दो अपने आप से, मैं नहीं करूंगा, अब हो गया खत्म। कौन कार्य कर रहा है, भगवान कर रहा है, और क्रेडिट किसको लेना है, उसको लेना है, मुझे करूं ये जगदान तो सकटन और बाहर जाने समानता ने, है ना। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता घूमता है वो सोचता है कि बोले को बैलगाड़ी तो मैं उठा रहा हूँ, गाड़ी का पूरा बोझा तो मैं उठा रहा हूँ, वास्तव में भगवान सब करते। तो नेवर प्रेज योरसेल्फ, अपनी प्रशंसा मत करो कभी भी, किसी पुरुष और स्त्री को बिना वस्त्र से नहीं देखना, फिर अपने भोजन को गोदी में लेकर नहीं बैठना, ये प्रयास करना चाहिए, गोदी में लेकर नहीं बैठना भोजन को। फिर पानी पे थूकना नहीं, कहने का अर्थ है कि भोजन की थाली है या पीने का पानी है उस पर थूकना नहीं, उससे अपमान होता है उनका। फिर मंदिर के कक्ष में सोना नहीं, ये तो आपको नियम पता है, मंदिर के कक्ष में सोना नहीं। सन्यासी को कम से कम दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए और गृहस्थ और ब्रह्मचारी को कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए दिन में। स्नान करना जरूरी होता है, 2 बार स्नान करने आप कहीं पर भी ठंडी में तो बीमार हो जाते, कुछ कुछ नहीं होता है। हम बात स्नान करेंगे तो पवित्रता रहेगी, और जनरली ऐसा भी देखा जाता है कि मन और शरीर दोनों ही पवित्र रहते हैं। फिर स्नान करने के बाद आपको एक फ्रेशनेस लगती है, और फ्रेशनेस लगने से सत्वगुण का उदय हो सकता है। जब आप फ्रेश नहीं होते तब आपको तमोगुण का उदय होता है, उस समय आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, आपको नींद आती रहती है, आपको किसी में कोई रुचि नहीं होती। इसलिए कम से कम दिन में 2 बार बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि के लिए भक्तों का संगत। अभी भी 3 दिन पहले मैं एक प्रश्न लेक्चर सुन रहा था जिसमें गुरु जी मेरे कह रहे थे कि भक्तों के पास जाकर के हमें ये पूछना चाहिए कि मुझ में क्या कमी है, मुझे बताया जाए, मुझे बताओ मुझ में क्या कमी है, मैं जानने को बड़ा इच्छुक हूं और उस पर काम भी करना चाहता हूं, मुझ में क्या कमी। और अगर ये चीज हम नहीं पूछेंगे या कोई भक्त हमें बताएगा नहीं कि हम में क्या कमी है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हम में क्या कमी है। अगर कोई नहीं पूछता है तो इसका अर्थ तो ये भी हो सकता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा वो मान रहा है ना, कि अब मुझे किसी को कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुझ में क्या, मैं सब जानता हूं, मेरी वीकनेस भी मुझे पता है, मेरे स्ट्रांग पॉइंट भी मुझे पता है, इसलिए अब मुझे कुछ किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पूछना है प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में दे दिया है, तो ग्रंथ खोल कर पढ़ लेने का। और ऐसा करने वाले भक्त जनरली देखा जाता है कमजोर रह जाते हैं, वो कमजोर रह जाते हैं। इसलिए भक्तों के पास जाओ और पूछो मुझ में क्या कमी है, अपने मित्र से पूछो मुझ में क्या कमी है, यह बड़ी आवश्यक बात है। फिर जहां पर प्रसाद लिया होता है उस स्थान को स्वच्छ कर देना चाहिए, जो स्थान पर प्रसाद लिया होता है, तो ऐसा नहीं कि दूसरा भी बैच वहां पर बैठ जाता है बिना स्वच्छ किए, तीसरा भी बैठ बैठ जाता है, ऐसा नहीं। एक बैच प्रसाद ले लेते हैं तो उस स्थान को स्वच्छ करना पड़ता है, तभी दूसरा बैच प्रसाद के लिए बैठ सकता है, ये पालन होना चाहिए जितना हो सके उतना। और यहाँ पर प्रसाद गिरा हुआ है, जहां पर सब कई बार कुछ प्रसाद गिरा होता है इधर उधर, उसको कूद के लांग के नहीं जाना चाहिए, उसको बाजू में से निकल जाओ या फिर ऐसा रास्ता ढूंढो कि जहां से आपको लांगना ना पड़े, क्योंकि वो साधारण फूड तो था ही नहीं, तो प्रसाद था। अगर आपका प्रसाद की बाल्टी है तो क्या उसको लांग सकते हो, तो उसमें से अगर एक कण गिरा है तो कैसे लांग सकते हो, तो उसको लांगना नहीं चाहिए। और कई बार तो उसके ऊपर चल भी लेते लोग, लांगने की तो बात छोड़ो, सीधा कृपा ही दे देते प्रसाद को अपने चरणों से। और फिर ऐसे प्रसाद वाले झूठे पांव से संसार भर को पवित्र करते, मंदिर में भी जाते हैं ऐसे झूठे पांव से, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाथ पांव धोना चाहिए प्रसाद लेने के पश्चात। एंड देन जैसा हमने बताया था वो चीज आपको, नाक में मुंह में हाथ डालने के बाद हाथ को धोना पड़ता है, या तो आप रुमाल रखा करो साथ में, आपको धोना पड़ता है, आप उसी हाथ से संसार को पवित्र नहीं कर सकते। हमें नाक मुंह हाथ उस सब जगह ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वास्तव में ये सारे गुण उस भक्त के हृदय में तुरंत प्रकाशित हो जाते हैं जो कृष्ण भक्ति का पालन करना शुरू कर देता है, लेकिन कई बार इसको एक्सटर्नली बताने की आवश्यकता पड़ती है ताकि अगर कोई छोटी मोटी गलती हमसे होती हो वो भी ना हो। वास्तव में तो आप जब भक्त बनते हो तो ये स्वाभाविक है, ये सब चीज अपने आप प्रकट हो जाती है। तो आप प्रयास कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन को गंभीरता से लेकर के ये भक्तों की जो क्वालिटी है वो हमें होनी चाहिए, और वो क्वालिटी हमें आई है कि नहीं आई है या हमें क्या कमी है उसको भक्तों के पास जाकर पूछना चाहिए। उन भक्तों की संगत नहीं करनी चाहिए जो चाहे दीक्षित भक्त हो या नॉन दीक्षित भक्त हो, वो भक्त अगर आपकी कृष्ण भक्ति में बाधा रूप हो, अगर वो भक्त के आचरण में त्रुटियां हैं बहुत सारी, अगर उस भक्त का रुचि कृष्ण भक्ति में नहीं है या बहुत कमजोर है, तो ऐसे भक्त का संग करने से उनके जो लक्ष्य है जीवन के वो लक्ष्य कुछ दिनों में आपके अपने लक्ष्य बन जाएंगे। उनके जो हेतु है जीवन जीने के वो हेतु आपको बिना मांगे प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप उसी सोच से सोचेंगे, उसी तरह से बोलेंगे, उसी तरह से भक्तों से व्यवहार करेंगे, और परिणाम यह आएगा कि वो तो खड्डे में गिरेगा, साथ साथ हम भी खड्डे में गिरेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो खड्डे में गिरेगा ही, उसको समय लग सकता है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उतना समय शायद उससे अधिक समय हमें लग जाए। तो इसलिए प्रॉब्लम एक ही है हम सबकी, समय का अभाव है ना, समय बड़ा जी कम है हमारे पास। सब सन्यासी लोग 70 के आसपास पहुंचने लगे, 70 के आसपास प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, और तेजी से समय भाग रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। जब ये सन्यासी लोग हमारे सामने से चले जाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उनको रोक नहीं सकते कि आप मत जाओ, अभी हमने आपका संग नहीं लिया है, अभी हमने आपकी कृपा प्राप्त नहीं की है, हमने अभी आपके आशीर्वाद आपका सेवा करने का अवसर नहीं मिला, ये कुछ नहीं चलेगा हमारा, वो अपने समय पे चले जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जीवन में गंभीर भक्त आगे बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बताया जा रहा था, गुरु जी बता रहे थे कि जो भक्त लोग सफल हुए हैं इस्कॉन संस्था में या हमारी परंपरा में, जो सफल भक्त है जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत परिश्रम किया है, वो ऐसे आसानी से नहीं हुआ ये सब। जब सफलता चाहिए तो परिश्रम बहुत करना पड़ता है, उसके लिए धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। सो अगली बार विल कंटिन्यू विद फर्दर डिस्कशन ऑन कृष्ण के भक्त बनना और जो प्राथमिक लक्षण होते हैं वैष्णव से, वैष्णव के, कि जो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, so we stop here.